अब आगे अगली बहुत प्यारी सूरत है, आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सूरत बनी इसराइल के बाद सूरत का हक, दोनों का रब देख लीजिए। सूरत बनी इसराइल शुरू हुई सुबहान अल्लाह के लफ्ज़ से, इसका इख्तिताम हुआ अल्लाहु अकबरहु तकबीरा, और अब अगली सूरत का हक शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। सूरत का हक में हम चार किस्से पढ़ने वाले हैं। शुरू में मैंने इंट्रो में बता दिया था, इस बारे में हम इसके तीन किस्से पढ़ेंगे और चौथा किस्सा हम पढ़ेंगे बाद में। हमारे लिए इसमें जो आज के दौर में इस सूरत कहफ को पढ़ने का हुक्म है, हर जुमे के लिए जुमे से जुमे तक नूर है। क्यों? दज्जाल के आने पे फितनों की बात है, तो जो दज्जाल का फितना होगा ना, उसमें ये चारों ही फितने होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। फितना ईमान और अकीदा भी होगा, दज्जाल लोगों से अपनी इबादत करवाएगा। फितना दौलत यानी मटीरियलिज्म का फितना भी होगा, वो इंसानों को अपनी दौलत से आजमाएगा। फितना इल्म भी होगा, इंसानों को हैरान करने वाले अमल करेगा, आपको तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे उसके सामने। और ये साइंस की तरक्की के साथ होगा, न जाने क्या वो DNA का क्या करेगा, मुर्दे सामने कब्रों से निकल कर आ जाएंगे। और ये साइंस की तरक्की दुनिया में अब इस तरफ जा रही है। और फिर फितना है हुकूमत और ताकत है, दुनिया के अक्सर हिस्सों पर उसकी हुकूमत होगी। तो लिहाजा आपने मैंने हर जुमे को सूरत अल-कहफ पढ़नी है, इन चार किस्म के इम्तहानात को पहचानना है और इनसे कामयाबी से निकलना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ी उससे दूसरे जुमे के बीच में नूर दिया जाता है, दो जुमों के बीच नूरानी हो जाते हैं। ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत भी है और पीछे का जिक्र मौजूद है, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ना है। अब हम ढूंढते हैं कि इसमें बात क्या है। इंशाल्लाह कल के बारे में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे जहाँ चारों किस्से पूरे होंगे, लेकिन अभी तो वर्बली आप इस कुरान के मिजाज से ही इसको समझेंगे। और सूरह कहफ कुरान पाक की फेमस सूरह है, 18th नंबर की सूरह है। इस बारे में इसकी 74 आयात हैं। कहफ कहते हैं गार को, खेप को, और ये किस्से से शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 1 से 12। कुरान की अजमत और पैगाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही अल-किताबा वलम यजअल लहू इवजा, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लायक हैं जिसने अपने बंदे पर यह कुरान उतारा और इसमें कोई कसर बाकी न छोड़ी, बल्कि हर तरह से ठीक ठाक रखा, ताकि अपने पास की सब सज़ा से होशियार कर दे, और ईमान लाने और नेक अमल करने वालों को खुशखबरियाँ सुना दे कि इनके लिए बेहतरीन बदला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और इन लोगों को भी डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ताला औलाद रखता है। दर हकीकत ना तो खुद इन्हें इसका इल्म है ना इनके बाप दादों को, ये तोहमत बहुत बुरी है जो इनके मुँह से निकल रही है, और वो निरा झूठ है जो वो बोल रहे हैं। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान ना लाएं, तो क्या आप इनके पीछे इस रंज में अपनी जान हलाक कर देंगे। हाईलाइट करिए कि इसको ज़रा बाद में बात करते हैं। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है, कि हम इन्हें आसमान दें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है। ये दुनिया कमरा इम्तहान है, वी आर इन एन एग्जामिनेशन हॉल। इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। क़यामत का बिलडोज़र इस ज़मीन के ऊपर जब फिरेगा तो सब ऊँच नीच ख़त्म हो जाएगी। क्या तो अपने ख्याल में गार और कतबे वालों को हमारी निशानियों में से तो बहुत अजीब निशानी समझ रहे हैं। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी को आसान कर दे। अक्सीर दुआ है दीन के काम करने वालों की जुबानों पर यह दुआ हो, रातों को अपनी करवटों में ये दुआ मांगें, क्योंकि इस रास्ते में बहुत बड़े बड़े फितने आते हैं। दुआ क्या है? रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा वहैय्यिब लना मिन अम्रिना रशदा। अभी तो बस इतना पता है कि दीन के काम कोशिशों से ज़्यादा दुआओं के साथ अल्लाह की रहमत से पूरे करते हैं। असाबे कहफ का किस्सा कंटिन्यू होता है। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल इसी गार में पर्दे डाल दिए, फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज़्यादा याद रखी। अभी किस्सा अगले रुकू में जाएगा। दो आयतें ईमान से मतलब हैं, कहफ 2, قیم لینذر باسا شدیدا. یہ لفظ قیم میں نے اس کو نوٹ کر لیا. امام ابن قیم ایک بڑے معروف استاد, ایک عالم گزرے. قرآن کو یہاں قیم کہا گیا, نیویگیٹر. قرآن ہمارا جی پی ایس ہے جو صراط مستقیم پر ہمیں سیدھا رکھتا ہے. یہ قرآن کی ڈوری ہاتھ میں رہے نا تو ہم بھٹکنے لگتے ہیں, بھٹکنے لگتے ہیں, کبھی کسی خوشی میں, کسی نیکی میں, کسی بدی میں, کبھی کسی پریشر میں, کسی لالچ میں. لیکن الحمدللہ یہ ہم سے غلط فیصلہ نہیں کرواتا, صحیح پہ لے آتا ہے. اور دوسری آیت 6 جو میں نے بیچ میں کہا تھا, اس کو یاد رکھیے, بخا کی کیفیت. دوسروں کی ہدایت کا اتنا غم لگ جائے, کیسے لگے کہ اس کو اپنی کوئی اولاد کا غم ہے, اس کو کسی اپنے پیارے کا غم ہے, جسے دوسروں کی ہدایت کی فکر نہیں لگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس کی اپنی ہدایت بھی پوری نہیں. آپ کو بھوک لگتی ہے نا تو آپ کو فوراً یاد آتا ہے کہ میاں سب کو بھی بھوک لگی ہوگی, بچوں کو بھی لگی ہوگی. اور کبھی آپ نے خود ذرا بھاری ناشتہ کیا اور دوسروں نے ہلکا پھلکا, آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ بیچارے تو بھوکے ہوں گے. ہدایت کا یہی حال ہے. فیتھ ان ایکشن, قرآن کی آسانی اور سچائی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنا, اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرنی ہے اور اس سے اپنے کاموں میں درستگی مانگنی ہے. اللہ ہمارے سارے معاملے کو آسان کر دے. آگے رکو نمبر 2:13 سے 17, اصحاب قحف کا قصہ جاری ہے, ایمان کا فتنہ. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی. اس کو ہائی لائٹ کریں. نیا نیا کاروبار کوئی شروع کرے تو نقصان ہوتا ہے, پہلے سال میں لاس ہوتا ہے, دوسرے سال میں ایون ایون معاملہ چلتا ہے اور تیسرے سال میں پروفٹ ہوتا ہے. یہ صرف کاروبار کا قصہ نہیں ہے, یہ ایمان اور ہدایت کا, یہ ایمان کی باتیں ہیں, ایمان کی طاقت ہے. ان جنگ بچوں کو کیسے ایمان گھروں سے نکال لایا اور یہ ایک جگہ جمع ہو گئے, اللہ نے پھر ان کی ہدایت بڑھائی. آپ کھائیں زیادہ آپ کی بھوک بڑھتی جائے گی, آپ سوئیں زیادہ آپ کی نیند بڑھتی جائے گی, آپ واک زیادہ کریں آپ کی واکنگ کیپیسٹی بڑھتی جائے گی, اور آپ ہدایت کی طرف بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. ہفتے میں ایک دن کی کمٹمنٹ کریں بس, زیادہ سے زیادہ کوئی مارا باندھا وقت ہوگا نا, کسی ویک میں 2 دفعہ آ جائیں گے, ہفتے میں بڑا احسان ہوگا, کوئی اس دفعہ 2 دفعہ نہیں آئی. اور آپ 2 دن کی کمٹمنٹ کریں, زیادہ سے زیادہ 3 دن ختم. اور آپ ہفتے میں 7 دن کی کمٹمنٹ کریں, مشکل ہی نہیں لگے گا, آسان لگتا. جو کام روز کریں وہ آسان ہوتا ہے, روٹین بن جاتی ہے, بندہ شیپ میں آ جاتا ہے. آپ ایک دن ذرا دیکھتے نہیں, ویکینڈ پہ بچوں کی روٹین خراب ہوتی ہے, اگلے دن صبح اٹھتے نہیں اسکول کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہا ہے اپنے دلوں کو باندھنے کے لیے. کیا فرمایا, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے. ہائی لائٹ کریں, دور سے کھڑے ہو کر نہ کہا کریں بڑا مشکل ہے, نہیں ممکن نہیں ممکن, اٹھ کے پکڑیے. دین کا کام, دین سیکھنا, دین کی خدمت, بندوں کے نفع کا بننا, دور سے ایک بہت بڑا گٹھڑ لگتا ہے. کوئی کہتے اس کو سر پہ رکھو, آپ کہتے نہ 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 یہ بہت مشکل ہے. یعنی جیسے بہت سارے لوگوں کا بھی صرف یہ دورے قرآن میں آنا ایک مشکل لگ رہا, آپ کو یہ مشکل لگ رہا, کوئی جان پہ بنی ہوئی ہے نہیں. اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک لانگ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیے, آپ کہہ رہے اتنا بڑا نہ نہ 1 مہینے تو ہم آئے باقی نہیں آئیں گے. اللہ کہتا ہے پکڑو, جو ہی آپ اس گٹھڑ کو پکڑتے ہیں نا تصور میں لائیں, ہیں یہ تو ہلکا ہے, وہ تو سفیری فوم ہے. آپ اس کو پکڑتے ہیں کچھ بھی نہیں, اتنا سر پہ لوگ ہائے تم نے اتنا بڑا پکڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تمہیں کیا بتا, اس کے سائے میں دھوپ بھی نہیں لگ رہی. یہ بات ہے, اس میں کھڑے تو ہوں پہلے, دور سے کیوں ڈرتے ہیں, ایک دفعہ کمٹ کریں, نہ کریں گے تو نہ کر کیا ہوگا, شروع کریں گے اللہ آسانیاں کر دے گا. اور یہ دعائیں بھی اللہ نے سکھا دی کیا, اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے, ناممکن ہم کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں, اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. ایمان بول رہا, ایمان کی طاقت یہ ہے. ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے सब तुम किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। मैं आपको मोहब्बत से रिक्वेस्ट करूँगी सूरत की तफसीर सुन लें, है हमारे यूट्यूब पे कहीं अलग से भी वेबसाइट पे है, अलग से ये पढ़ी, रोने वाली आते हैं। जब आप इस रास्ते में आते हैं, गैर अल्लाह से दूर होते हैं, फिर अल्लाह की जो रहमत है, गार को तो अल्लाह ताला आपके लिए एक इंक्यूबेटर बना देते हैं। गार में आपको छोटे छोटे घर में छोटे छोटे कमरों में वो सुकून मिलता है जो लोगों को बड़े घरों में नहीं मिलता। अल्लाह ने उस गार को उनके लिए एक राहत का सामान बना दिया। ये बड़े अमीर घरों के बच्चे थे, लीट के बच्चे थे, लेकिन इनको छोटे से गार में ऐसी प्यारी नींद आ गई। और देखिए अल्लाह अब उनके इंतजाम क्या करता है, आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्ते थलू इनके गार से दाई जानेब को झुक जाता और बवक्ते गरूब इसकी बाई जानेब कतरा जाता और वह इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास पर है और जिससे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सके। बैठ सोल ना लग जाए, करवटें भी अल्लाह ने बदल दी। अल्लाह को आपकी बड़ी फिक्र हो जाती है जब आप उसके हो जाते हैं। मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहु। कभी पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अपनी जान माल वक्त दिल को अल्लाह के रस्तों में लगाया, उनके अंदर ठंडक कितनी है। लोग कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, उनको लगता है ये शिर्क का जुमला। ये कहिए अल्लाह आपका ख्याल रखता है। ये जो आपको मुझे अभी तक बहुत सारी बातें नहीं समझ आई ना, उसकी वजह यह कि अभी असहाबे कहफ की तरह ईमान की उन बुलंदियों को नहीं छुआ। हम बंदों में खोए रहते हैं, कौन करेगा, ये ना हुआ तो क्या होगा, वो करा लेगा अल्लाह किसी से भी। तुम अपनी फिक्र करो। ईमान से मुतल्लिक आयत 13, आजमाइश में बंदे का खरा खोटा अलग हो जाता है, अल्लाह जाने हमारा कल ईमान किस दर्जे का होगा। 17 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट या पता नहीं 9 कैरेट ही हो। अल्लाह ना करे कोई कह दे ये रोल्ड गोल्ड है भाग दो, वो मुनाफिक लोग होंगे। लिखिए एक जुमला, यूथ का टैलेंट पिक है। बूढ़े लोग मोर कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, वो वक्त और हालात और ख़ानदान के साथ रेजिस्ट नहीं करते। वो कहते नहीं चुप करो, दुनिया निभानी है, अभी बच्चों की शादियाँ भी करनी है। लेकिन जब भी चेंज आई तो बड़ों के अंदर नहीं बच्चों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में दावतें दीन दी ना, सब बूढ़े तो दुश्मन थे एक्सेप्ट फ्यू के। बस आप देखिए कि अबू तालिब मुस्लिम नहीं हुए तो उनके दो बेटे हज़रत अली और जाफर तैयार इस्लाम के सुतून बन गए। आप उधर देख लीजिए, अबू जाहल बाप है तो बेटा इकरमा है इस्लाम पे। तो जुमला लिखिएगा, इस्लाम पर जवानी तब आती है जब जवान इस्लाम पर आते हैं। और आज 6 सदी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज की डेट लिख के रख लीजिए, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जवानों के अंदर ईमान और इस्लाम उठ गए। बहुत सो के भी तो बंदा फिर उठ ही जाते हैं ना, सो सो के उठ रहे हैं। बड़े अभी उनको बड़ा डराते हैं लेकिन वो नहीं डर रहे। तो क्या फेथ इन एक्शन है, कोई भी मुश्किल आए तो हक के रास्ते को नहीं छोड़ना, अल्लाह की राह पर चलते हुए इसी की रहमत और मदद तलब की जाएगी। अब आखिरी हिस्सा है इस किस्से का 18 से 22, जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। पतख सब हम अकाश हम रुकूत। आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। हम इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे, इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर उन्हें देखना चाहते तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके रोग से आप पर दहशत छा जाती। सच्चे ईमान वाले का रोग होता। आज इस्लाम का शेर सोया हुआ, जैसे ये जाग गया ना तो सब गीदड़ भक्तियों की तरह भाग जाएंगे। आज मुसलमान सोया हुआ, इसी तरह हमने इन्हें जगा कर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे। उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या एक दिन से भी कम, ये है ये दुनिया। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है, अब तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर ना होने दे। इस जुमले पे आगे जाके बात होनी है। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पाले या तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। देखिए 100 साल के करीब सो के जागे हैं, 950 जितने भी साल हैं, और ईमान की फिक्र है। अल्लाह होगा, सच्चा ईमान ऐसा ही होता है। जान नहीं कह रहे, कहते हो तुम्हें तुम्हारे दीन से पलटा देंगे। हमने इसी तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे इनके गार पर एक इमारत बना लो, और इनका रब इनके हाल का ज़्यादा आलिम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया, वो कहने लगे हम तो इनके आस पास मस्जिद बना लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि असाबे कहफ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता, कुछ कहेंगे 5 थे और छठा इनका कुत्ता। यानी अटकले खाम खा की बहसें, गैब की बात तो अटकल के 3 तुक्के चलाते हैं, निशाना देखे बगैर पत्थर चला देने की तरह ये मुहावरा है अरबी जुबान का। कुछ कहेंगे 7 हैं, 8वां इनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, कि इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके बारे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गिछ भी ना करें। कुरान का बीच सेंटर हो गया, मुबारक हो आपको, आपके निस कुरान की तकमील है। वल यतलत्तफ, और आपने नोट किया कि मैसेज क्या था इधर, नरमी और होशियारी। किधर होशियारी से जाना, अल्लाह ये दो चीज़ें उम्मत मुस्लिमा को दे दे। दूसरी बात है, इतने भूखे इतने भूखे इतने भूखे, क्या कहा, जाओ अज़का तमाम, ये नहीं कहा जो मिले ले आओ, मक्खियों वाले दही वाले मिले ले आओ, और वो मट्टी पड़े हुए पकौड़े मिले तो ले आओ। तो लिखिए वो पकीज़ा खाना खाकर दीन पर जम गए और हम लज्जतों में सब भूल जाते हैं। असाबे कहक तौहीद का पैगाम लेकर उठे, उनका मैसेज क्या था, तौहीद। लोगों ने इस मुकाम को शिर्क का मरकज बनाना चाहा। ये हुआ सारे नेक बुजुर्गों के साथ, वो उलमाए दीन, वो औलिया कराम जिनको लोग आज जानते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में तौहीद का प्रचार करते थे। लोगों ने शख्सियत परस्ती की आड़ में आज उन्हीं की कब्रों पर मज़ार बना लिए। हमारे लिए अमल का नुक्ता ऐसी किसी चीज़ में नहीं आना। असाबे कहफ की हक परस्ती और इस्तकामत पर गौर करना है और दीन में बहसों से बचना है। अब यहाँ पे वो किस्सा पूरा हुआ, बीच में कुछ कमेंट है। रुकू नंबर 4 पे तबसरा है, 23 से 31। गैब की बातें अल्लाह के इल्म में हैं। वला तकूलन लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, क्या इंशाल्लाह कहने की बात आ रही है, ज़रा सी तवज्जो रखिएगा। और हरगिज़ हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना, और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करो, और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की राहबरी करे। वो लोग अपने घर में 300 साल तक रहे और 9 साल और ज़्यादा गुजारे। आप कह दें कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है। आसमान और ज़मीन का गैब सिर्फ इसी को हासिल है, वो क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है, सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तेरी जानिब तेरे रब की तरफ से ये किताब वही की गई है, इसे पढ़ता रहे, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, तो इसके सिवा हरगिज हरगिज कोई पनाह की जगह न पाएगा। और अपने आप को इन्हीं के साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और इसी के चेहरे के इरादे रखते हैं, रजामंदी चाहते हैं, खबरदार तेरी निगाहें इनसे हटने न पाए, कि दुनियावी जिंदगी के ठाट के इरादे में लग जा। देख इनका कहना न मान, जिनके या जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजर चुका है। अल्लाह हम ऐसे ही लोगों का साथ दे और ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान ले आए और जो चाहे कुफर करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसके शोले इन्हें घेर लेंगे, अगर वो फरियाद रसी चाहेंगे तो इनकी फरियाद रसी इस पानी से की जाएगी जो तेल की गर्म धार जैसा होगा, जो चेहरे को भून देगा। बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ी ही बुरी आरामगाह यानी दोज़ख है। इसके बरस यकीनन जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते। मनी बैक गारंटी है, अल्लाह आपके एक एक अमल को संभाल के रखेगा। इन कितने हमेश की वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ रंग के नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे, वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उमदा आरामदा है। किसने रोका आपको सोने के कंगन पहनने से? यहाँ दुनिया में औरतें पहनती हैं, वहाँ मर्द भी पहनेंगे। हदीस में आता है कि जहाँ जहाँ वजू का पानी लगता है वहाँ जेवरात पहनाए जाएंगे। ईमान से मुतल्लिक दो आयात कहफ 29 लिखिए, पमन शाफल यू में पमन शाफल जब वे इतना ही है। हिदायत का दरवाज़ा अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। हैंडल नहीं होता दिल के बाहर, अंदर होता है। जब तक अंदर से आप नहीं खोलें, किसी की दुआ या किसी की तड़प आपको फ़ायदा नहीं देती। फिर कहफ 30, जो अल्लाह का बन जाता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। फेथ इन एक्शन, हर अच्छे काम के लिए इंशाल्लाह कहना, अल्लाह की रजा पाने के लिए उसे सुबह शाम पुकारना और अगला रुकू करना। रुको नंबर 5, 32 से 44, बाग वालों का किस्सा, फितना माल। अब दूसरा फितना इधर हमारे सामने, वतरिब लहुम मसल रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब। और इन्हें इन दो शख्सों की मिसाल भी सुना दीजिए जिनमें से एक को हमने दो बाग अंगूरों के दे रखे थे और जिन्हें खजूरों के दरख्तों से हमने घेर रखा था और दोनों के दरमियान खेती लगा रखी थी। दोनों बाग अपना फल खूब लाए और इसमें किसी किस्म की कमी न थी, पर हमने इन बागों के दरमियान नहर जारी कर रखी थी। अलगरज इसके पास मेवे थे। एक दिन इसने बातों की बातों में अपने साथी से कहा, अब देखिए फ्लॉन्ट कर रहा है, शो मार रहा है, जैसे आज लोग अपनी प्रोफाइल्स पे पिक्चर्स और चीज़ें दिखाते हैं लोगों को कि देखो हमारे पास क्या है। बड़े फख्र से कहने लगा, मैं तुझसे ज़्यादा मालदार हूँ और जत्थे के एतबार यानी ग्रोह के एतबार से भी बहुत मजबूत हूँ, लेकिन मेरे पास तो चीज़ें ही बहुत हैं, ये अंदाज़ है। और ये अपने बाग में गया और था अपनी जान पर जुल्म करने वाला। कहने लगा, मैं ख्याल नहीं करता कि किसी वक्त भी ये बर्बाद हो जाए। दुनिया के बारे में यही हमारा गुमान होता है, ये कभी नहीं ख़त्म होनी, और न मैं क़यामत को कायम रहने वाली या क़यामत को कायम होने वाली ख्याल करता हूँ। और अगर बिलगर्ज मैं अपने रब की तरफ लौटा भी दिया गया तो यकीनन मैं इस लौटने की जगह से बेहतर पाऊँगा, यानी जिस रब ने यहाँ दे दिया वहाँ भी दे देगा। ये आज बड़े दौलत वालों को गुमान है। इसके साथी ने इससे बातें करते हुए कहा, क्या तू इस माबूद से कुफर करता है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया? ये कौन सा कुफर था? मादा प्रस्ती का शिर्क है, या बुत नहीं है, मैटर है माल दौलत। फिर नुतफे से फिर तुझे पूरा आदमी बनाया, लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूँगा। तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों ना कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, यानी इंशाल्लाह। कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है, बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से भी ज़्यादा बेहतर दे दे और इस पर आसमानी अजाब भेज दे तो ये चटियल और साफ मैदान बन जाए। मोमिन की निगाह ये होती, क्या लेना इस चीज़ को कल ख़राब हो जानी है, क्या लेना इसको कल पुरानी हो जानी है। उसको उन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं जिससे लोग मरते हैं, या फिर क्या हो कि इसका पानी नीचे उतर जाए और तेरे बस में न रहे कि तू इसे ढूंढ लाए और इसके सारे फल घेर लिए गए। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, बस वो अपने इस खर्च पर जो उसने इसमें किया था अपने हाथ मलने लगा और बाग तो उंधा उल्टा पड़ा था। और वो शख्स ये कह रहा था कि काश मैं अपने रब के साथ किसी को भी शरीक ना करता। किसको शरीक किया? माल को। इसकी हिमायत में कोई जमात ना उठी कि अल्लाह से इसका कोई बचाव करती, और ना वो खुद ही बदला लेने वाला बन सका। यहीं से साबित है कि इख्तियारत अल्लाह बरहक के लिए हैं, वो सवाब देने और इंजाम के एतबार से बहुत ही बेहतर है। क्या सीखा? अपनी नेमतों पर गरूर नहीं करना बल्कि शुक्रगुजार बनना है। अच्छी चीज़ को देखकर माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला कहना, हदीस के मुताबिक फिर उस चीज़ को नज़र नहीं लगती। कोई भी माल चीज़ अच्छी लगे, किसी की भी लगे, तो माशाअल्लाह कहें, मुंह भर भर के तारीफें ना करें। आगे अब दुनिया की ज़िंदगी, अब वाक़या था माल का, अब इसके सीक्वेंसेस और इस पर तबसरा। रुकू 6, 45 से 49, दुनिया की ज़िंदगी महज धोखा है। वद्रिब लहुम मसलल हयात दुनिया कमा अंज़लनाहु मिनस्समा, इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान कीजिए जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं और इसे ज़मीन का सब्ज़ा मिला जुला निकलता है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़रा सा अपनी जवानी और फिर ढलती उम्र को देन में लाए और फिर बुढ़ापा तो ऐसा जैसे ऑटम के सूखे पत्ते ज़मीन पर उलते हैं, कोई उनको नहीं सजाता अपने गुलदानों में, कोई बालों में ऐसे फूलों को नहीं लगाता जो मुरझा जाए। ऐसे एक दिन हम सब भी हो जाएंगे अगर जिंदा रहे तो। असल बात के अल मालू वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक सवाब के एतबार से और आइंदा की अच्छी तवक्को के बेहतरीन है। अल्लाह आपके बच्चों को आपके लिए बाकियात सालेहात बनाए और आपके माल को भी। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और ज़मीन को तो साफ खुली हुई देखेगा और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इनमें से एक भी बाकी ना छोड़ेंगे और सब के सब तेरे रब के सामने सब बस्ता हाजिर किए जाएंगे, यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया। क्या लेकर आए थे अफसर? खाली हाथ आए थे। लेकिन तुम तो इस ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर करेंगे भी नहीं और नामे अमाल सामने रख दिए जाएंगे। बस तू देखेगा गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफजदा हो रहे होंगे। क़यामत के दिन बंदा सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर रहा होगा? अल्लाह से, जहन्नम से? नहीं, अपने लिखे हुए अपने करतूतों से। और कह रहे होंगे हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटी बात छोड़ी और ना बड़ी, कोई छोटा बड़ा गुनाह बगैर घेरे बाकी ही नहीं रखा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म और सितम ना करेगा। उस वक्त के लिए तैयार है ना? अमल का नुक्ता, हर दी गई नेमत का सही इस्तेमाल उसे बाकियातु सालेहात में बदलेगा। नामे अमाल में छोटी बड़ी चीज़ लिखी जा रही है, जवाबदेही के एहसास के साथ जीना है। और अल्लाह आपके मेरे पर्दे रख ले, क़यामत के नस्ब के बीच में हमारे कोल ना खोले। अब दोबारा आदम और इब्लीस का किस्सा, यहाँ एक और ही तनाजर है इसका, 50 से 53, रुकू नंबर 7, शैतान की पैरवी करने वालों का बुरा अंजाम। वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया, ये जिन्नों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो? जवाब दीजिए खुद को, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन है, ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है? मैंने इन्हें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था और ना खुद इनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब नहीं देगा, क्योंकि हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे, है ही कोई नहीं जो पुकार का जवाब दे। और गुनाहगार जहन्नम को देख कर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले, लेकिन इससे बचने की जगह ना पाएंगे। शैतान आपका मेरा दुश्मन, इसको पहचानिए। फेथ इन एक्शन, शैतानी हरबों का पहचानना, इनसे बचना। पहले पहचानेंगे फिर ही बचेंगे, तो अपने बच्चों को इस दुश्मन से मुतारफ कराइए। फिर आगे 54 से 59, रुकू 8, कुरान पाक में मुख्तलिफ मिसालें हैं। वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरान लिन्नास मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान में हर हर तरीके से तमाम की तमाम मिसालें लोगों के लिए बयान कर दी हैं, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। लोगों के पास हिदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इस चीज़ ने रोक रखा कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए, इनके सामने खुल्लम खुल्ला अज़ाब मौजूद हो। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि वो कुछ खबरियाँ सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं, इसको नोट कीजिएगा, कुफर का तोड़ा ये, और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज़ से डराया जाता है इसे मजाक बना डाला, इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे तरफ की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुँह मोड़े रहे, और जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेज रखा इसे भूल जाए। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं, कोई इसे ना समझे, और इनके कानों में बोझ है अगर तू इन्हें हिदायत की तरफ बुलाता रहे लेकिन ये कभी हिदायत ना पाएंगे, अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। तेरा परवरदिगार बहुत ही बख्शिश वाला और मेहरबानी वाला है, वो अगर इनके अमाल की सज़ा में इनको पकड़े तो बेशक इन्हें जल्दी सज़ा देगा यानी अजाब, बल्कि इनके लिए एक वादे की घड़ी मुकर्रर है जिससे वो सिरकने की हरगिज़ जगह ना पाएंगे। ये हैं वो बस्तियाँ जिन्हें हमने इनके मजालम की बिना पर वारद कर दिया और इनकी तबाही की भी हमने एक मियाद मुकर्रर कर रखी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पकड़ एक दिन आते रहती है। ईमान से मुतल्लिक एक ही आयत थी सुकू में 55, कहा मोहलत मुद्दत तक अल्लाह पर्दापोशी करता है कि गुमराह राह पर आ जाए। अल्लाह करे कि उससे पहले हम रिटर्न हो जाए। फेथ इन एक्शन, कुरान में दी गई मिसालों से सबक हासिल करके इन गलतियों से बचना है। कुरान पाक की किसी आयत या हुक्म का मजाक नहीं उड़ाना। अपनी ज़िंदगी के रवैये पे नज़र सानी करनी है और फिर इसके बाद अब आखिरी वाक्य इस बारे में जो हमारे शुरू होगा और अगले में पूरा होगा, पारा एंड की तरफ 60 से 70, हिस्से मूसा व खिजर, इल्म का फितना। वही क़ाल मूसा लिफ़ताहुला अब्रहु हत्ता अब्लुगा मजमाल बहरैन, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूँ, ख्वा मुझे साल खास साल चलना पड़े। कमिटमेंट, इल्म का सफ़र अनथक मेहनत का सफ़र है। जब वो दोनों दरिया के संगम पर पहुँचे वहाँ अपनी मछली भूल गए जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा लाओ हमारा नाश्ता तो दो, हमें तो अपने इस सफ़र से सख्त तकलीफ उठानी पड़ी, यानी जब रास्ता बदलने लगे तो भूख भी लग गई। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगा कर आराम कर रहे थे वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। हम होते तो क्या करते, चलो फिर आज छोड़ दो तो छुट्टी कर लेते हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा, ट्रैफिक बहुत है। और इस पर इतनी बड़ी बात आपने पढ़ी, आई विश कि मैं बस टाइम और मैं आपको बताऊं। सही डायरेक्शन पे जा रहे थे तो थकन नहीं हुई, मुलाजिम की या शागिर्द की गलती से रास्ता गलत हो गया, थकने लगे पता नहीं क्या, जिसम थक रहा टूट रहा। किधर है भाई वो मछली, वो तो पीछे रहे। ओ अच्छा, वापस चले। एक तो कमिटमेंट, दूसरा उलमा कहते हैं जिसकी कोशिशें सीधे रास्ते पे होती है ना वो नहीं थकता। मिशन, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले कब नहीं थकते, जब वो अल्लाह और रसूल के तरीकों पे मिन इस तरह चलते हैं। वो इसको प्रोफेशन नहीं बनाते बट प्रोफेशनली करते हैं, उनको थकन नहीं होती। और अगर थोड़ा सा करके थक जाते हैं तो हम सब अपनी नियतों के किबलों को देखें। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अता फरमाई थी और इसे अपने पास से खास इल्म अता कर रखा। इससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे अपने इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। इसने कहा आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं, यानी उनकी साइड भी ले रहे हैं साथ ही साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूँगा। उसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछिएगा जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तस्करा ना कर दूँ। तालिब इल्म और उस्ताद का ताल्लुक 100 पॉइंट है। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह मूसा और खिजर के किस्से में इल्म के आदाब पे दुआ करिए अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। अब सब सीखेंगे, पता क्या चला कि इल्म का रास्ता सब्र का रास्ता। हमारे लिए अमल के नुक्ते, ज़िंदगी के बहुत से मामला हमारी समझ से बाहर होते हैं, इनमें सब्र से काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात से अल्लाह की हिकमतों को समझना, ये कल के सबक में हम शुरू में करेंगे। पारे का थीम में बहुत कुछ आ जाएगा। और अब आखिरी चंद आते हैं 71 से 74, इल्म की तलब। जाग रही है आपके अंदर कि भर गया दिल? चलिए फंतलका हत्ता इज़ा रकीबा फिर सफ़ीनति ख़रक़हा, फिर दोनों चले यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए, खिज़र ने उसके तख्ते तोड़ दिए। अब देखिए उस्ताद ऐसा काम कर रहा है जो शागिर्द को समझ ही नहीं आता। मूसा ने कहा, क्या आप इसे तोड़ रहे हैं कि कश्ती वालों को डबो दें? बेसब्रे भी होते हैं ना कुछ लोग, उनको नहीं समझ आता ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उनके लिए सबक है इसमें। ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खिजर ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र न कर सकेगा। सब्र उस्ताद को तो दिख रहा होता, शागिर्द को नहीं दिखता, बाद में दिखता है जब वो भी वहाँ ऊपर पहुँच जाता है। देखिए ऊपर से सब दिखता है, नीचे नहीं दिखता, नीचे कई चीज़ें छुपी रहती हैं। आप ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा व्यू दिखेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, खिजर ने उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के ही बस मार डाला, बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। शागिर्द शागिर्द की होता है, लेकिन उस्ताद को उस्ताद बनना चाहिए। फेथ इन एक्शन, इंसानी अकल अल्लाह की हिकमतों को नहीं पा सकती। मुश्किल हालात में सब्र के साथ अच्छे वक्त का इंतज़ार करना है। और उस्ताद शागिर्द के साथ ताल्लुक़ पे पारा पूरा हो रहा है तो दो तीन जुमले ले दिए। उस्ताद किसको कहते हैं? जो इल्म दे। उस्ताद वो होता है जो इल्म की तलब दे, जो मोटिवेशन दे। उस्ताद कौन होता है? एक सवाल और ले लें। उस्ताद वो होता है जिसके पास बैठकर अपना इल्म पहले से कम लगे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून। आज आप ईमान की शाखें देख लें तो माले गनीमत का खुमस 10वें पारे में पढ़ कर आए हैं। आपके मेरे करने का काम नहीं। ये दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ऐसे हुकाम दे दे जो इस्लाम को नाफिज करें, और फिर माले गनीमत जो दुश्मनों से हासिल हो फिर उसको सही बांटें। सवाल लिखिए कि माले गनीमत कैसे मिलेगा आज के दौर में, जब जंग होगी तो किताल का इनकार करके अपने दीन को ज़ाया ना कीजिए। इसके लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ती है, और इसी तरह से उम्मत मुस्लिमों के लिए ये हलाल है। मुस्तफा अहमद की रिवायत से पता चलता है कि उन 5 चीज़ों में से एक है जो अल्लाह ने नबी सल्लम के लिए हलाल की थी। पहले नबियों की उम्मतों के लिए ये हलाल नहीं था। और अनफाल 69 में लफ्ज़ भी आया है फ़कुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तैयबा, कि खा सकते हो। माल गनीमत की तकसीम अल्लाह की बांट है। सूरह अनफाल 41 यानी 10वें पारे की पहली आयत में हम पढ़ चुके, और फिर 30वीं यानी सेकेंड ब्रांच ऑफ ईमान आज के सेशन की जिस पे पारा पूरा हो रहा है वो क्या है? क़ुर्ब इलाही के लिए ग़ुलाम आज़ाद करना। आज भी हमारे पास ये चॉइस नहीं है, क्योंकि ग़ुलाम वो होता है जो किसी की मलकियत और तसरुफ़ में हो। ग़ुलामी का ख़ात्मा हो चुका है आज इस्लाम की वजह से। अब क्या करें? गुनाहों को कफ़ारा बनाकर ग़ुलाम आज़ाद करवाएंगे ताकि ग़ुलाम ख़त्म हो। फिर ज़कात के मसारिफ में एक सर्फ जो है एक जगह वो ग़ुलाम को आज़ाद कराना है। सूरह तौबा की आयत 60 में हमने ये पढ़ लिया था इन्ना मसदक़ात में, वो क्या था कि वो लोग जिनकी गर्दन को आज़ाद कराना है। वह फिर रिकाब का लफ्ज़ है इसमें। ग़ुलाम आज़ाद करने का अजर बहुत है, जिसको सुनकर सहाबा इकराम और ख़ास उस्मान गनी हर जुमे के ग़ुलाम आज़ाद कराते थे, और अगर किसी जुमे नहीं कर सके तो अगले जुमे 2 करते थे। और मुस्लिम की रिवायत 3795 बताती है कि जिसने ग़ुलाम को आज़ाद किया उसकी गर्दन के बदले उसकी गर्दन, और इसी तरह उसके जिस्म के हर उसके बदले आज़ाद कराने वाले का वो उस जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। आप और मैं आज क्या करें? बेगुनाह कैदियों को आज़ाद करवाइए जो जेलों में पड़े हुए हैं। तो आज का फ़र्क क्या था? कुफर का तोड़। क्या देखा कि उम्मत में एक ख़ास करेक्टर बनेगा तो अल्लाह की मदद आएगी, और जो कोशिशें कर रहे हैं वो इस्लाम को मिटा नहीं सकते, शोला बनकर फूंक दे खाश आपके गैर अल्लाह को। खौफे बातिल क्या कि है गारित गरे बातिल भी तो, यानी अल्लाह की तौहीद पुख्ता कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल पे लिख लें तो सब बातिल भाग जाएंगे। आज की दुआ करते हुए जाइएगा उठते हुए, अल्लाहुम्मा अक्सिना अक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वजिरना मिन हिस्सि दुनिया वज़ाब अल-आख़िरा। अल्लाह हमारे सारे कामों का अंजाम बेहतर कर, और दुनिया और आखिरत की रसवाई से हमें बचा और हमारी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही वअस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।